रेडियो जिंदगी 1550 एम या फिर 99.7 एफएम एचडी 3 पे गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं आपके साथ ईरा। शो लेके आए हैं एडब्ल्यू लॉ शो, ब्रॉट टू यू बाय एडब्ल्यू लॉ ग्रुप। एज ऑल ऑफ यू नो कि एडब्ल्यू लॉ ग्रुप की टीम हमारे साथ हफ्ते में दो बार ऑन एयर होते हैं, वेंसडे की दोपहर को 3:30 से 4 बजे और फ्राइडे की दोपहर को 12 से 12:30 बजे के बीच में। तो लिसनर्स, अगर आप उनसे कोई बात करना चाहते हैं, चाहे वो इमिग्रेशन के लिए हो, चाहे वो डेट सेटलमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स, एस्टेट प्लानिंग, इनमें से कोई भी बात करना चाहते हो, यू कैन रीच एडब्ल्यू लॉ ग्रुप ऑन देयर ऑफिस नंबर 510-936-8211, दैट्स 510-936-8211। उनकी वेबसाइट है awlawgroup.com। और आज हमारे साथ स्टूडियो में अटॉर्नी आसमा हैं, हु विल बी टॉकिंग अबाउट यू वीजा एंड असाइलम। तो अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में सवाल पूछना है, चाहे यू वीजा हो या फिर असाइलम हो, आप फोन करके बात कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट, यू कैन आल्सो बी अनोनिमस, बिकॉज असाइलम के केसेस यूजुअली लोग अनोनिमस ही डिस्कस करना पसंद करते हैं। सो आप फोन कर सकते हैं 510-770-1550 पर, दैट्स 510-770-1550। एंड इट्स कम्प्लीटली ओके टू नॉट गिव अस योर नेम। अटॉर्नी आसमा, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो।
थैंक यू ईरा, गुड आफ्टरनून।
How are you doing? Let's start with happy Wednesday.
Thank you. Today's a nice weather. I'm doing well.
Today's nice weather. We are more than halfway through the week.
Yes.
So the weekend is just around the corner and it's a long weekend. So superb. So starting, you know, today's topic is U visa and asylum. So let's begin from the beginning with the U visa. Mm-hmm. Basics. What is a U visa?
So U visa jo hai, ye basically it's a non-immigrant visa. और ये डिज़ाइन किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कि किसी क्राइम के विक्टिम होते हैं, जैसे अगर कोई रॉबरी का विक्टिम है या फिर अब्यूज़ का विक्टिम है या फिर कोई स्मगलिंग का विक्टिम है, तो फिर उन लोगों के लिए यू वीज़ा है। ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो आपके आपको 2 साल तक मिल सकता है, इसमें एक्सटेंशन भी हो सकती है।
All right, that's really interesting. Mm-hmm. तो listeners, यू वीजा की बात कर रहे हैं, just a reminder, if you have any questions, you can call us on 510-770-1550. तो यू वीजा की आपने जब बात की, सपोज करें कि अगर मैं यूएस में लीगल नहीं हूँ और अगर मैं कोई क्राइम रिपोर्ट करती हूँ, तो क्या डिपोर्ट होने के चांसेस होते हैं? लोगों को हमेशा डर होता है कि हम पुलिस में कैसे जाएं।
आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ईरा। एक्चुअली यू वीजा का पर्पस ही ये था कि क्राइम्स को ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट किया जाए और लोग जो हैं वो अपने इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से डरे मत। तो अगर कोई इमिग्रेशन स्टेटस की वजह, अगर कोई किसी, जैसे किसी कोई यहाँ पर इलीगल है लेकिन उसको उसको किसी ने लूट लिया, उसको किसी ने मारा पीटा, तो अगर यू वीजा ना होता, यू वीजा के होने से पहले लोग ऐसे क्राइम को रिपोर्ट करने से डरते थे कि अगर हम पुलिस के पास गए तो पुलिस जो है वो हमें डिपोर्ट कर देगी। लेकिन उनको खास तौर पे मना किया गया है कि अगर कोई इलीगल है वो कोई क्राइम रिपोर्ट करता है तो पुलिस उसको डिपोर्ट नहीं कर सकती, वो जो विक्टिम है वो यू वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। बिकॉज पर्पस यही था कि लोग ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करें और लोग अपने इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से पुलिस को असिस्ट करने में हेजिटेट ना करें।
अच्छा,
तो अगर देखें वो कंट्री में रहेंगे तो तभी वो फिर रिपोर्ट, वो फिर विटनेस बन सकेंगे, तभी वो सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे या कोई एविडेंस प्रोड्यूस कर सकेंगे।
एग्जैक्टली तो इस यू वीजा के रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं?
सो रिक्वायरमेंट ये है कि यू नो व्हाट, कि जो एप्लीकेंट है वो किसी लाइफ थ्रेटनिंग क्राइम का विक्टिम होना चाहिए, जैसे रॉबरी हो गया, स्मगलिंग हो गया, अब्यूज हो गया, तो उसके लिए फिर यू वीजा होता है। और दूसरा यह है कि आपको पुलिस को ये रिपोर्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे सो दैट शोज दैट यू आर अवेलेबल टू हेल्प पुलिस टू सॉल्व दिस क्राइम मिस्ट्री, कि जो भी सस्पेक्ट होगा आप उसको पकड़ने में पुलिस की मदद करेंगे। तो एक तो ये कि आप एक उस क्राइम के विक्टिम हो, दूसरा ये कि आप अवेलेबल हो पुलिस को हेल्प करने में, पुलिस आपको जब भी कॉल करे कि हमने कुछ सस्पेक्ट को अरेस्ट किया, कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई देम, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें।
ऑल राइट लिसनर्स, अगेन जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, वी आर टॉकिंग टू अटॉर्नी आसमा फ्रॉम एडब्ल्यू लॉ ग्रुप। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट यू वीजा एंड असाइलम। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें इमिग्रेशन के बारे में, चलिए इट डज नॉट हैव टू बी ओनली अबाउट टुडेज टॉपिक, इमिग्रेशन का कोई भी सवाल आपके पास है तो आप फोन करके बात कर सकते हैं ऑन 510-770-1550 1550. So talking about attorney, as we're talking about U visa, क्या इसमें कोई अपनी डिपेंडेंस को इंक्लूड कर सकते हैं?
बिल्कुल, अपने डिपेंडेंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं. वो जब इनिशियल यू वीजा एप्लीकेशन फाइल करते हैं, या तो आप अपने डिपेंडेंस को तब इंक्लूड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और अगर आप तब ना करना चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं. और अगर आप अपने डिपेंडेंस के लिए बाद में यू वीजा फाइल करते हैं, तो अगर आपने पहले से ही कोई एविडेंस सबमिट कर दिया, यू डू नॉट नीड टू रीसबमिट इट. और इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपके डिपेंडेंस जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, तो आप उनके लिए भी फाइल कर सकते हैं. और जो इसमें एक और मैं कहती हूं कि बहुत अच्छी बात यह है, वो ये है कि अगर एप्लीकेंट की उम्र 21 साल से कम है, तो फिर कुछ दूसरे रिलेटिव्स भी हैं जो कि डिपेंडेंट काउंट कर सकते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए. लेकिन अगर एप्लीकेंट जो है वो 21 साल से ऊपर की उम्र का है, 18 से 21 साल की जो एज है, इसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया. लेकिन अगर 18 साल से नीचे है विक्टिम, तो वो अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर सकता है, और अपने कुछ सिबलिंग्स को भी. दूसरा ये है कि अगर लेकिन वो 21 साल से ऊपर है, तो फिर उसको फिर वो सिर्फ अपने स्पाउस के लिए कर सकता है और अपने बच्चों के लिए कर सकता है. तो ऐसे में मैं ये कहूंगी कि अगर कोई इफ समवन इज अ विक्टिम ऑफ यू वीजा एंड यू नो व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट दिस ऑप्शन, दे शुड टॉक टू अ लॉयर. आप खुद से इस पे काम मत कीजिए, बिकॉज यू वीजा जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन होती है. सो इट्स बेटर कि आप किसी लॉयर से बात करें, उसकी फीडबैक ले लें कि मुझे अगर मेरे साथ ये हुआ है तो मैं आगे कैसे अप्रोच करूं, what are the different steps involved. क्या मैं district attorney की help लूँ, क्या मैं police के पास जाके इसकी certification करवाऊँ, या मैं किस तरह से आगे इसको proceed करूँ.
All right. So let's take a break here. Actually नहीं, मेरे पास में आपको यू वीजा को लेकर एक सवाल और है
जी.
कि आपने डिपेंडेंस का बोला कि दे डोंट, इट्स ओके टू नॉट बी हियर बट दे कैन स्टिल बी स्पॉन्सर्ड.
दैट्स करेक्ट.
और यू वीजा कैन, यू नो, नॉर्मली पीपल अज्यूम या फिर चाहते हैं कि उनका जो भी वीजा है वो नॉन इमिग्रेंट से इवेंचुअली रेजिडेंसी पे जाए, तो कैन दिस यू वीजा लीड टू परमानेंट रेजिडेंसी?
येस इट कैन, लेकिन उसके लिए यह है कि आपको कुछ सम सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को आपको फॉलो करना होगा. एक तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको जब भी पुलिस बुलाए या आपको डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के ऑफिस से कोई कॉल आती है, तो यू शुड बी अवेलेबल टू कोऑपरेट विद द क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीन. एक तो ये है. दूसरा ये है कि वो आपकी उसमें कुछ लिमिट है, यू माइट बी एलिजिबल फॉर अ परमानेंट रेजिडेंसी आफ्टर 4 years. तो आपको वो देखना है. और फिर ये है कि मैं ये कहूंगी कि आपकी जब आप एलिजिबल हो जाएं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, आपको किसी अटर्नी से बात करना चाहिए जो यू वीजा पे काम करता हो, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन को देख के बता सकता है कि वेदर नॉट यू आर एलिजिबल फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, एंड इफ यू आर तो व्हाट राउट यू नीड टू टेक, आप इसको कैसे फॉलो करोगे.
तो खुद से ना करें,
खुद से ना करें, बिकॉज यू वीजा इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वीजा एप्लीकेशन.
ओके,
तो या
ऑल राइट, वेल ग्रेट, थैंक यू अटर्नी आसमा फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. लिसनर्स, If you also have any questions about immigration, we have attorney Asma in the studio till 4 p.m. So you can call us and ask a question on 510-770-1550. Coming up is a really interesting number. It's called Desi Thumka and this is by Numan Khalid. And this is on a special request. So let's hear it and I hope you enjoy this.
Uh-huh. Numan Khalid. Sama Kumbare. मैनू पैण भुलेखे तेरे, मैं वेखा जेड़िया रावा, मैनू पैण भुलेखे तेरे, हाँ पैण भुलेखे तेरे, मैनू पैण भुलेखे तेरे, मैं वेखा जेड़िया रावा, मैनू पैण भुलेखे तेरे, हाँ पैण भुलेखे तेरे, कंगना खड़कां दी जा अखियां मटकां दी जा लंघदी शर्मांदी तू कोल आंदी जा.
Oh, God.
away from me, that's what's good. Back in no stress, then, cause I am.
Welcome back everyone, welcome back to Radio Zindagi 1550 AM and 99.7 FM HD3. Main hoon aapke saath Ira aur show chal raha hai AW Law Show, brought to you by AW Law Group. And we have attorney Asma in the studio. Now we are going to be talking about asylum. Lekin dosto, aapko yaad dila do, anything you have about immigration, koi bhi sawal immigration ke kisi bhi topic ko leke, aap attorney Asma se puchna chahte hain, you can call on 510-770-1550. That's 510-770-1550. Or you can also get in touch with the team of AW Law Group on 510-936-8211. That's 510-936-8211. Or the website is awlawgroup.com. And not just immigration, you can also help you with debt settlement, estate planning, contracts and agreements also along with immigration. So, Tanya Asam, moving on, let's talk about asylum. Again, the basics. What is asylum?
So, asylum jo hai, ye actually aise logon ke liye design kiya gaya hai jo ke apne mulk mein wapas nahi ja sakte, kyunki unki jaan ko khatra hai. Aur unki jaan ko khatra isliye hai ki unki ek khas, matlab wo ek khas race se belong karte hain, ek khas unki caste hai jisko khatra hai, ya unki nationality aisi hai ki agar wo apne country of origin mein rahenge to unko country of origin ya jahan pe bhi unki pehli residency wo wahan par rahenge to unko jaan se maar diya jayega, ya phir unko apne religion ki wajah se ya koi political association ki wajah se unko apni jaan se khatra hai. To United States jo hai actually har saal bahut se log aate hain US mein panah mein shelter ke liye. Bahut se aise log hote hain jo ki war crimes ke victim hote hain ya phir wo religious persecution ko avoid karke wo US mein enter ho jate hain.
Right.
To unke liye agar wo wapas apne mulk jayenge to unke liye halaat wahan pe theek nahi, aur mostly ye log aise hain ki jahan pe government jo hai wo bhi bahut corrupt hoti hai, to government is unable to protect them no matter wo apne mulk mein ke kisi bhi kone mein jaakar baith jaye, unke liye mushkil hai. So agar aisa kisi ki aisi halat hai to they can file for asylum aur unko United States jo hai wo unko accept kar leta hai.
To you said it has to be it should be mostly political or caste based or
religion,
whatever reason. It cannot be a personal feud.
No,
family mein ki chacha ne kuch kar diya aur mama ne kuch kar diya.
Nahi.
So caste or religion.
Unless aapka chacha jo hai wo itna influential hai ki aap kisi bhi kone mein ja ke baith jaye wo aapko maar dega.
So it could be like
chacha
that.
Jo hai wo president hai. And you know what?
Or a big gunda. Just hypothetically, just for the sake of figuring out, if your chacha is somebody who will not let you live in any corner of the country, you can get out of it.
Well, you know what? Depend karta. Dekhi, wo to aapki personal feud hai na. It doesn't have to, if your chacha is after you, like because of your religion, because of your political ideology,
then it is possible.
Yes, then it is possible.
Okay.
You might be eligible for asylum. But again, dusra ye hai ki aapko ye prove karna hota hai ki aapne apne country mein, you have exhausted all the options to look for shelter, to look for protection. So this is why you need shelter in another country. So then you come to the US and then you apply for asylum. And US, I would say, ke luckily, it had been very generous in comparison to the other countries to accept the asylees and refugees.
ओके ऑल राइट, तो इस असाइलम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है?
बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे कि इरा मैंने आपको बताया कि एक तो ये है कि यू मस्ट बी, मतलब आपको अपनी जो जिंदगी को आपको खतरा है वो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ड्यू टू योर एसोसिएशन विद अ पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप, आपके रिलीजन, आपके रेस की वजह से होना चाहिए. अगर देखें आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं, दैट्स नॉट एनफ फॉर असाइलम. और दूसरा मैं इसमें ये भी बताऊंगी, एक तो ये कि अगर आप अगर आपके पास आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट हुआ है, दैट्स नॉट एनफ. दूसरा ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में हालात ठीक नहीं है. दिस इज अ जनरल, इट्स टू ब्रॉड, दिस इज टू ब्रॉड, इट्स अ जनरल क्लेम. आप इस क्लेम पे असाइलम के लिए एलिजिबल नहीं है. तो अगर आप जस्ट ये कहें कि भाई जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मेरा फलां मुल्क है वहां पे पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, यू नो व्हाट, दैट्स अ जनरल क्लेम, दिस इज नॉट द बेसिस फॉर असाइलम. इसी तरह कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे वहां पे ना कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि मेरा वीजा जो है विजिट वीजा वो ओवर वो एक्सपायर हो गया तो मैं जाना नहीं चाहता, मेरे पास नौकरी नहीं है वहां पे. No, this is not enough for asylum. Because asylum जो है वो एक specific group के लिए design किया गया है कि जिसको अपने मुल्क में जान के लिए खतरा है तो वो फिर US में shelter के लिए आते हैं. तो यहाँ पे मैं एक ये बात भी कहूंगी कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि you know what, attorneys जो हैं वो ऐसी applications पे काम करते रहते हैं, so attorneys can help you to draft a story. No, attorney की ये job नहीं है. Attorney आपकी story को translate कर सकता है but attorney आपके लिए story नहीं बना सकता, this is a fraud. हाँ, लेकिन अगर आपके पास वैलिड स्टोरी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी अटर्नी से एडवाइस ले लें कि डू यू थिंक कि इफ आई फाइल फॉर असाइलम माय क्लेम वुड बी सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दीज रीजंस.
ओके ऑल राइट, सो एंड यू सेड पीपल कैन और कैन नॉट गो बैक टू देयर कंट्री ऑन असाइलम.
वेल यू नो व्हाट,
मुश्किल होती है, मैंने सुना है दैट ठीक है यू नो, एंड मीन when normal people regularly just talk, I mean of course you know better about it, but then you know people say ki acha tumne khud hi country ko choda tha and now they'll have difficulty.
So the thing is this, jaise dekhen agar main claim karti hu ki mujhe Pakistan mein meri jaan ko khatra hai, mujhe asylum mil jata hai aur phir 6 mahine baad main kehti hu ki mujhe to apni family se milne jana hai, so you know what it's like, I'm negating my own claim which I previously asserted. To phir usme ye hota hai ki aapko, hum apne clients ko suggest karte hain ki dekhen agar aapne asylum ka claim kiya hai aapki jaan ko waqai So you should sit in the United States for at least until the time आपका आपकी citizenship हो जाती है. कुछ लोग green card पे भी travel कर लेते हैं, लेकिन ऐसा है कि फिर जब वो वापस आते हैं तो फिर port of entry वाले उनको बहुत ज्यादा question करते हैं कि आपने तो इस country के खिलाफ asylum file किया था, तो अब आप फिर वहां पे क्या करने जा रहे हैं. तो कुछ there are some exemptions, जैसे अगर आपके कोई family member है उसकी health बहुत खराब है, आपको उसको मिलने जाना है या कोई इमरजेंसी है, तो उसमें आपको वो आपको नहीं पूछते. बट यूजुअली वी डू नॉट सजेस्ट देम, हम कहते हैं कि आपकी एक दफा सिटीजनशिप हो जाए फिर आप चाहे जहां मर्जी ट्रैवल करो. बट अगर आपके पास सिटीजनशिप नहीं है एंड यू स्टिल वांट टू ट्रैवल, तो फिर हम ये सजेस्ट करते हैं कि देखें कि आपका फैमिली मेंबर जो है वो ट्रैवल किसी और थर्ड कंट्री में कर सकता है, जैसे कैन दे कम टू सिंगापुर, कैन दे कम टू थाईलैंड, और आपको फिर आप अपने पासपोर्ट पर ट्रैवल मत करो. यू कैन travel on passport too, but it is recommended कि आप travel permit ले लें, वो 2 साल के लिए valid होता है, तो फिर आप उस पर travel करें.
Okay, and again talking about dependence, कोई अपने spouse को या बच्चों को या dependence को बाहर से ला सकते हैं अगर उनका asylum
बिल्कुल बाहर से भी ला सकते हैं, और अगर वो US में है तो वो उनके लिए भी file कर सकते हैं. उसमें थोड़ा time limit है, ये है कि अगर जब आपकी initial asylum application approve हुई थी तो आपको फिर 2 साल के अंदर अंदर अपने spouse के लिए और dependent के लिए file करना पड़ता है जो कि country से बाहर है. तो स्पाउस और बच्चे सिर्फ वही हो सकते हैं, और ऐसे बच्चे जो कि जिनकी उम्र 21 ईयर से कम है अगर वो यूएस में है, तो अगर वो 21 ईयर से अबव है तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन में शामिल नहीं हो सकते. आपको फिर उनके लिए सेपरेट एप्लीकेशन करनी पड़ेगी.
ओके, और असाइलम की एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होती है तो क्या होता है?
दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, अगर आपकी असाइलम की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो वो आपको ऑटोमेटिकली डिपोर्टेशन में डाल देते हैं. अब आप ये है कि आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं उसकी इमिग्रेशन कोर्ट में. अब दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. तो इमिग्रेशन कोर्ट में जब आपका केस जाता है, यूजुअली आपकी जो हियरिंग है वो ही 1 साल 2 साल के बाद स्केड्यूल होती है, और फिर इस दौरान आप इतना लंबा अरसा गुजार रहे हैं यूएस में, तो ऑफकोर्स यू नो वट, यू वुड नीड टू वर्क कि आप अपने खाने का पीने का पे कर सकें. तो उसमें यह है कि उस दौरान फिर आप देखें, अगर आपकी एप्लीकेशन 5 महीने से ज्यादा पड़ी होती है असाइलम के लिए पेंडिंग, तो आपको यूएससीआईएस वर्क परमिट इशू कर देता है. तो जब तक आपका केस पेंडिंग है, आप काम कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको वर्क परमिट नहीं मिला और आपका केस जो है वो इमिग्रेशन कोर्ट में पहुंच गया है, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप किसी अटर्नी से बात करें, वो आपके वर्क परमिट के लिए इमिग्रेशन जज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप USCIS को एडवाइस करें कि वो वर्क परमिट इशू करें.
ऑल राइट. वंस अगेन लिसनर्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इमिग्रेशन, वी हैव अटॉर्नी आसमा टिल 4 PM. आप फोन कर सकते हैं 510-770-1550 पर. दैट्स 510-770-1550. और यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद द टीम ऑफ AW लॉ ग्रुप ऑन द नंबर 510-936-8211. 510-936-8211. देयर वेबसाइट इज awlawgroup.com और देयर ऑफिस इज इन न्यूयॉर्क, 37600 सेंट्रल कोर्ट, स्वीट 207, न्यूयॉर्क. अटर्नी आसमा, अगर असाइलम की बात करते हैं तो अभी करंट प्रोसेसिंग टाइम कितना है?
बहुत अच्छा आपका सवाल है. वेल, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से सर्विस सेंटर में फाइल किया है और कहाँ पे आपका आपकी रेजिडेंस कहाँ पर है. जैसे अगर आपकी रेजिडेंस हवाई में है तो आपके इंटरव्यू का टाइम 1 साल 1.5 साल बाद आएगा.
Okay.
अगर आपकी रेजिडेंस कैलिफोर्निया में है तो हो सकता है आपका जल्दी टाइम आ जाए, 4-5 महीने के बाद आपके इंटरव्यू की डेट आ जाए.
वाई सो?
वेल, बिकॉज हवाई में जो है वो असाइलम ऑफिसर्स नहीं होते, वो यहीं से मेन लाइन से कोई ट्रैवल करके जाएगा. इसी तरह अगर आप अलास्का में रहते हैं तो आपके इंटरव्यू की डेट बहुत दूर होगी. कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में जो लोग रहते हैं उनके लिए टाइम जल्दी आ जाता है. तो मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि इसका जो है प्रोसेसिंग, इसका जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं. स्टेप वन ये है कि आप अगर असाइलम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 1 साल के अंदर अंदर जब आपकी US में एंट्री हुई थी आपको असाइलम के लिए फाइल करना होता है.
mm-hmm.
और उसको अफर्मेटिव असाइलम हम बोलते हैं. अगर आपकी वो एप्लीकेशन डिनाई हो जाए, डिनाई होने से पहले ये होता है कि आपको जो USCIS है वो एक इंटरव्यू के लिए स्केड्यूल करते हैं.
ओके.
उसमें इंटरव्यू में आपसे जो असाइलम ऑफिसर है वो सारे फैक्ट्स पूछेगा कि अच्छा किस बेस पे आप असाइलम फाइल कर रहे हो, कैसे कैसे ये इंसिडेंट हुए, आपने अपने कंट्री में किससे कॉन्टेक्ट किया, डिड यू फाइल अ पुलिस रिपोर्ट, आपने इसके अलावा आपने क्या किसी अपने कंट्री में किसी दूसरे सिटी में किसी दूसरे प्रोविंस में मूव होने की कोशिश की. ये सारे आपसे फैक्ट्स लेने के बाद वो असाइलम ऑफिसर जो है वो सारा एविडेंस देखते हैं, वो खुद रिसर्च करते हैं कि ये क्लेम वैलिड है या फिर ऐसे ही किसी कोई मेकअप स्टोरी है, और फिर उसके बाद वो डिसीजन देते हैं. तो अगर वो डिनाई कर देते हैं तो फिर आपका इमिग्रेशन कोर्ट में जाता है, और अगर वो डिनाई नहीं करते तो फिर आपको यू नो व्हाट, आपका असाइलम अप्रूव हो जाता है, आपको असाइली का स्टेटस मिल जाता है, आप अपने डिपेंडेंट्स के लिए और स्पाउस के लिए फाइल कर सकते हैं.
टॉकिंग अबाउट द असाइली एंड द अप्रूवल, असाइलम अप्रूवल, डज दैट लीड टू परमानेंट रेजिडेंस?
यस, इट डज. आपका जब असाइलम अप्रूव हो जाता है उसके 1 साल के बाद आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. और इसका पर्पज ये था कि 1 साल में असाइलीज को इतना टाइम मिल जाता है कि वो देख लें वेदर दे कैन बी एडजस्टेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स कल्चर एंड एनवायरमेंट. तो 1 साल में उनको इतना टाइम मिल जाता है कि वो यहीं पर रहकर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल करना चाहते हैं, अपना असाइली स्टेटस एक्सटेंड करना चाहते हैं या फिर वो वापस जाना चाहते हैं.
ऑल राइट. सो दैट वॉज अबाउट असाइलम. इसके पहले हमने यू वीजा की बात की. लिसनर्स, अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी थिंग एट ऑल अबाउट इमिग्रेशन, यू कैन गेट इन टच विद अटॉर्नी आसमा. उनके ऑफिस नंबर पे नाओ 510-936-8211. दैट्स 510-936-8211. Or you can also get back on air with us on Friday afternoon at 12 noon. You guys stay tuned to Radio Zindagi. I will see all of you tomorrow morning at 8 a.m. Jiye jao.